نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والبمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ایک وہ اعلان ہے یہ اللہ کی طرف سے, اس اعلان کی تفسیر میں اللہ نے پورے اعلان پورے قرآن میں اس اعلان کی تفسیر فرمائی ہے کہ جو انسان ہے اس کی کامیابی صرف اور صرف اسی چیز پر ہے. کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی جو اللہ نے حکم فرمائے اور ان کو کیسے بجا لائے, وہ کیسے بجا لائے. وحیت اللہ رسول اللہ, حکم اللہ کا ہوگا اور طرز کرنے کی اس عمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ دو کام کر لے گا انسان تو وقت فاز فوز نظیم, صرف یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوگا بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کی, بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کامیابی کے نقش جھلکیاں تو انسان اسی وقت دیکھنا شروع کر دیتا ہے جب موت آ جاتی ہے. موت سے ہی اس کو اپنی کامیابی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے, کیوں اس دنیا سے نکل جاتا ہے ختم. اب دوسرے دنیا میں جو کامیاب ہے تو اس کی پہلی سٹیج سے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے کہ تو بھی کتنا کامیاب ہے. تو باقی جتنے بھی سٹیجز ہیں, جو راستے ہیں, جو طریق, جو مرحلے آتے ہیں انسان کے موت کے بعد, ہر ملح پہ الحمدللہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. سبحان اللہ, کامیاب جو انسان ہے پاس ہو چکا ہے. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا, جو سخت سے سخت ترین مرحلہ ہے اس مرحلے کو آسمان آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ بڑھتا میں چلا جائے, حتیٰ کہ وہ کامیاب ہوتے ہوتے الحمدللہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہاں بھی وہ کامیابی ہے, فاز فوز عظیمہ بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ نے فاز فوز عظیمہ کہا ہے. کامیاب جا رہے ہیں, جنت مل گئی, محلات مل گئے, عورتیں مل گئیں, اللہ کے جو وعدے تھے اس کامیابی عطا ہو گئے. ابھی بڑی کامیابی رہے گی جس کو نصیب ہوگی اس وجہ سے کہ اس نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو دنیا میں قائم کیا. اب وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی دیدار الہی سے. جس وقت اللہ کے دیدار تک پہنچ جائے گا تو پھر ہوگا وقت فاز فوزن عظیما. وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہمیں؟ اطیع اللہ. یہ ہے دوستو, باقی کچھ سب ڈرامہ جو کچھ بھی ہے. اس رستے کو پانے کے لیے अल्लाह सुबहाना ताला ने ला तादाद रस्ते बनाए, लामहदूद रस्ते हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक ने हमारा इंतज़ाम किया कि बंदे को तकलीफ़ ना हो, किसी न किसी रस्ते को पकड़े और उसके कामयाबी भी चला जाए। और मुकाबले में दो चीज़ें ताकत अल्लाह ने रख दी, शैतान और नफ्स, जो सबसे बड़ी रुकावट है रास्ते के अंदर, जो इंसान को कामयाब नहीं होती। उनको भी अल्लाह ने ताकत दे दी, सख्त तरीन ताकत दोनों के पास, नफ्स के पास भी और शैतान के पास भी। अब यह है कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, कोई रास्ता पकड़ लेता है, तो फौरन नफ्स और शैतान उस पर हमले करने शुरू कर देते हैं, दीन बिगाड़ देते हैं, दीन में बहुत सी चीज़ें मखलूत कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। प्योर दीन नहीं होता, वो समझते हैं बिल्कुल प्योर दीन पे हैं, किसी को किस तरफ से लगा दिया, किसी को कुछ डाल दिया दीन के अंदर, किसी के मामला कुछ और डाल दिया, धोखे में रखते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक चाहिए, जो अल्लाह ने ऐलान फरमाया है कि काफ़त सलमा के मुकम्मल तौर पर जो होगा, बोले सुभान अल्लाह, मुकम्मल जाते रसूल है तो मुकम्मल तात होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये नहीं कि भाई एक जगह कर लिए वहाँ छोड़ दिया फिर थोड़ा कर लिया, नहीं जी ये तो ये था, नहीं ये फ़कत फ़ाज़ा फौज़ नज़ीमा जो उस वक्त होगा कि दोनों काम जो होंगे मुकम्मल। अल्लाह ने किस चीज़ को रोका है, आराम का है, वो ये नहीं देखना कि भाई क्या है, जगह है, माहौल, कुछ नहीं, बस अल्लाह का हुक्म आ गया, करने का आ गया तो वो करना, रुकने का आ गया तो वहाँ रुकना है। और यही इंसान का जो है सबसे बड़ा इम्तहान है, यही इम्तहान है बस। वरना तो ऐसा बहुत आसान था कि जो चाहे कर ले, आदमी कोई चीज़ छोड़ दे, कोई सवाल कोई मामला कर लिए, कोई नहीं किया, गोया के मोमिन की ज़िंदगी को अल्लाह पाक ने कहा कि तुम एक सर्कल के अंदर ही कामयाब हो सकते हो। सर्कल जो दायरा वो है किसका है, अतीउल्लाह रसूल का है, एक पल के बराबर भी आप उससे निकले नहीं, कोई काम भी अपनी मर्जी से किया नहीं, इस दायरे से आदमी निकल जाता है। ये है मसला। तो अब वैसे आदमी को शैतान नफ्स धोखा देता है, नहीं यार तुम ये तो करते हो, कोई बात नहीं, ये कर लिया क्या फर्क पड़ता, नहीं ये तो करते हो इससे क्या फर्क पड़ता है, बस ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। नाकाम इंसान अपने आप को नाकाम समझे ताकि वो कामयाबी की तरफ भागे कि नहीं ये बात नहीं है, मुकम्मल इस्लाम नहीं आ रहा, मुकम्मल अब दीन नहीं आ रहा, ये चीज़ तो ऐसी थी मैंने ऐसी क्यों की, मजा नहीं, फिर भागे उसकी तरफ। तो ये ऐसे रस्ते बताए अल्लाह ताला ने जिसमें इंसान कोई रास्ता पकड़े तो उस पर चल सकता है। एक हदीस का मफहूम आपके सामने पेश करता हूं कि क़यामत कायम होने के बाद जब लोग पहुंच जाएंगे, जन्नती पहुंच जाएंगे जन्नत में, दोज़ख़ दोज़ख़ में पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त ये एक माहौल होगा जन्नत के अंदर, एक अजीब कैफियत होगी जन्नतियों के लिए। हदीस का मफहूम ऐसे है कि कैसी जगह होगी जन्नत में जहां से बहुत रोशनी फूट रही होगी, पेंट हो नारे आ रहे होंगे रोशनी की, लपटें आती होंगी रोशनी की, ऊंच कैसी जगह होगी, तो जन्नती भी हैरान होंगे, झांक के देखेंगे कौन लोग हैं, पता नहीं चल रहा होगा। वहां पर एक कौम होगी, एक बोले सुभान अल्लाह, एक कौम होगी वो जन्नत में पहुंची हुई कौम होगी। और जाहिर है जन्नत में तो कोई शख्स पहुंच नहीं सकता जिसने इस फार्मूलों पे अमल नहीं किया हुआ, मैं युति अल्लाह फरसूलहू फ़क़त फ़ाज़ा फ़ौज़ अज़ीम, वो तो अल्लाह ने कह दिया कि कामयाबी तो उसी शख्स को है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा और कंप्लीट करेगा, बाई पार्ट नहीं। इस मुल्क में कुछ और हो गए, उस मुल्क में कुछ हो गए, सऊदी अरब में तो कुछ हो गए, पाकिस्तान के तो कुछ और हो गए, अमेरिका के तो कुछ और हो गए, नहीं, अल्लाह का कानून हर कामयाबी के लिए चाहिए कि जहां भी जा रहा है उसके गले में एक तौक पड़ा हो अतीउल्लाह अती रसूल का, वो ना निकल पड़े, एक्सेप्ट उसकी जिंदगी जो है नाइना हो नबी पाक की इताअत का, सुन्नत पे अमल करने का और अल्लाह सुब्हान व तआला अहकामात को उनके मुताबिक करने का। तो वो भी नमाज पढ़ रहा हूं, मैं नमाज तो पढ़ रहा हूं लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो नमाज नहीं है। उसको नमाज तो नहीं आप कहेंगे। हज कर रहा हूं लेकिन हज सुन्नत के मुताबिक नहीं हो तो हज नहीं होगा। हर इबादत ऐसी है जिसमें जरा मिलावट हो गई खत्म। अल्लाह ने मियार रख दिया कि वो चीज इबादत उस वक्त बनेगी जब वो मेरे नबी करीम की मुताबत पे होगी। तो मकराम यही कहते हैं, बुजुर्गान दीन यही कहते हैं। तो वो जो लोग होंगे जन्नत उस मुकाम पर, वो कौम जो होगी वो जाहिर कामयाब तो होगी, उसने इस मकसद को पाया होगा, उसके बगैर तो आ नहीं सकता। तो अहले जन्नत देखेंगे कि जब वो जो कौम होगी ऊपर से, वो ऊपर से जब झांक के कहेंगे हम देखें तो सही जन्नत वाले कैसे लोग हैं, सुभान अल्लाह। और जिस वक्त वो अपने धृजों से नीचे की तरफ झांकेंगे तो हदीस में आता है कि उनके चेहरों से ऐसी रोशनी फूटेगी, सुभान अल्लाह, ऐसा नूर निकलेगा कि पूरे जन्नतियों को, जितने जन्नती हैं उनको नूरा नूर कर देगा। अल्लाह ये कौन लोग हैं। और 70,000 दरीचे होंगे जन्नत के जहां से नूर के फवारे और चश्मे फूट रहे होंगे, लोगों तक जा रहे होंगे। जन्नती कहेंगे भाई बड़े बड़े अमाल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इस मकसद को पाया होगा। तो ये तो अजीब गरीब कौम है ये। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें दिखा तो सही है कौन, हम भी तो जाके देखें लोगों को जन्नत के आखिर हैं कौन, ये भी कैसे इन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो फिर वो अल्लाह के हुक्म से उन जन्नतों की तरफ रवाना होंगे उस मुकाम पर देखने के लिए क्या चीज़ है, आखिर कौन सा अमल था। मैंने बताया ना लातादाद अल्लाह सुब्हानहु तआला ने तरीके दिए हैं जिसके जरिए से इस कामयाबी को हासिल इंसान कर सकता है। तो तजस्स ये होगा कि इनको ये कामयाबी जो मिली इतनी ऊँची, इन्होंने कौन सा तरीका अख्तियार किया, क्या चीज़ थी इनके पास। जब वो वहां पहुंचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, और जो चीज होगी जिसकी तजस्स में वहां पहुंचे होंगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लोग वहां जन्नती होंगे ऊपर जिनके चेहरों से नूर फूट रहा होगा उनकी पेशानियों पर वजह लिखी होगी, मुस्बत कर देंगे अल्लाह ताला उनकी पेशानी ऊपर, और उसी जगह से वो नूर फूट रहा होगा सारे जन्नत में जा रहा होगा, और लिखी होगी इबारत उनकी पेशानी ऊपर। और वो इबारत क्या होगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी वजह से मेरे किसी प्यारे बंदे से मोहब्बत की थी, सुभान अल्लाह। तो गोया उन लोगों ने ये रास्ता पकड़ा था कि अल्लाह सुभान ताला के किसी नेक बंदे से अल्लाह की खातिर, ये बहुत बड़ा फिक्र है अल्लाह की खातिर, याद रखें जहाँ अल्लाह की खातिर होगा और दुनिया का ताल्लुक नहीं होगा, जाहिर दुनिया तो छोड़नी है तभी तो अल्लाह मिलता है इंसान। अल्लाह की खातिर उन्होंने किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत की होगी, अल्लाह के प्यारे से अल्लाह के बंदे से मोहब्बत की होगी, या अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी होगी। तो उन्होंने इस तरीके के साथ अतीउल्लाह व अती रसूल की मंजिल को तय किया मोहब्बत के जरिए से। मेरे भाइयों, ये भी अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है इंसान को कि किसी अल्लाह के नेक बंदे से, अल्लाह के बंदे से इंसान को मोहब्बत हो जाए। और जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत होगी सुभान अल्लाह, वो तो बड़ी अजीब गरीब होगी फिर, क्योंकि इस मोहब्बत से क्या होगा, कैसे मंजिल इंसान हासिल करता है। अल्लाह सुभान तआला इस मोहब्बत में इतनी बड़ी बरकत रखी है, इतना बड़ा फजल और करम रखा है कि जब बंदा किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत शुरू कर देता है, जाहिर है वो तो इतना बुलंद नहीं होता, और मकसद उसका ये होता है सिर्फ अल्लाह, तो खुद अल्लाह सुबहाना ताला, अल्लाह सुबहाना ताला वो तमाम कैफियात अतीउल्लाह अती रसूल की उस बंदे के अंदर आना शुरू हो जाती है, मुनक्कस होना शुरू हो जाती है उस इंसान पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एंड यही होता है उस इंसान का जो किसी बंदे से मोहब्बत करता है, सोबत में बैठता है, उसके पास जाता है इस्तकामत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बातों को सुनता है, तो फिर अल्लाह के फजल से उसमें अतीउल्लाह रसूल की तमाम बातें आती हैं, गुनाह छूट जाते हैं, बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़ाहिर है जो अल्लाह का प्यारा बंदा होगा तो उसमें सफ़ात तो होंगी नहीं, نماز بھی پڑھتا ہوگا, جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوگا, غیبت بھی نہیں کرتا ہوگا, فراڈ بھی نہیں کرتا ہوگا, سنت پہ بھی عمل کرتا ہوگا, تبھی تو اللہ کا پیارا بندہ بنا. اللہ کیوں کہے گا اس کو پیارا بندہ؟ خراب بندے کو بندہ خراب تو اللہ پاک نہیں نہ کہہ سکتا میرا بندہ ہے. تو جب اس میں یہ ساری صفات ہوں گی اور انسان اس میں جا کے بیٹھنا شروع ہو جائے گا, اس کے نزدیک لگنا شروع ہو جائے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے سے اس بندے کو بھی سمجھ کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروق کی سرحندی بہت ہی بڑی شخصیت ہیں, سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سربراہ ہیں پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں, مجددیہ سلسلہ آپ کی. اتنے بڑے انسان تھے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی مجاہدے پر تھے اپنی جماعت کے ساتھ, تو تخری میں تھے یا کسی جنگل میں تھے, کسی مقام پر تھے, تو رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ پوری وہ جگہ تھی جو نورا نور ہو گئی, وہ سارا روشن ہو گئی جگہ. اللہ پاک نے ان پہ عقدہ کھولا. تو جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا ان سے, مریض نے کہا تھا یہ کیا چیز تھی, کیسے ہوا یہ معاملہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھ پہ عیاں کی ہے, مجھ پہ ظاہر کی ہے کہ آج سے 450 سال بعد میرے ایک شخص آئے گا اس دنیا کے اندر, اور اس وقت ساری دنیا کفر کی طرف بھاگ رہی ہوگی, بدعتیں ہیں, ضلالتیں ہیں, سب دین ختم ہو رہا ہوگا, بالکل ختم. 450 بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو میں پیدا کروں گا, جب وہ آئے گا تو پوری دنیا میں اس کا شریعت کو احیا کرے گا, زندہ کر دے گا میری سنتوں کو. تو وہ شخص کون ہوں گے؟ حضرت شیخ احمد فاروقی سرحندی رحمۃ اللہ کے بارے میں بشارت تھی. تو فرمایا یہ میرا خرقہ ہے, یہ اپنے اولاد سے کہا کہ رکھو اور یہ پہنچاتے رہو, جب وہ آئے تو شیخ خرقہ اس کو دے دینا قاضی سلسلہ. تو یہ پہنچا حضرت شیخ کو, یہ دیا گیا ہے. وہ اس زمانے پھر آئے, وہ زمانہ ویسے ہی تھا, اکر واش نے تماشا مچایا تھا پوری دنیا کے اندر. تو الحمدللہ انہوں نے کھڑے ہو گئے اس عمر میں. تو جو سزا ان کو دی گئی گوالیار کے قید خانے میں بند کر دیا گیا, 3 سال بند رہے. تو یہ تو آج کل کی جیلوں تھیں, وہ بھی سخت بادشاہ کی جیل تھی, مصیبتیں پریشانی سب کچھ اٹھائیں. 3 سال کے بعد معاملہ پلٹا اور بادشاہ پہ پتہ چل گیا کہ بھائی تو معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ الٹا ہے, گرفت ہوئی اس کی, کسی واقعہ لمبائی ہے. پھر وہ خود گیا معافی مانگنے کے لیے جیل میں حضرت کے پاس, اور اس نے رہائی کے لیے کہا کہ حضرت معافی مانگی, توبہ کی اور کہا کہ آپ واپس آئیں, تشریف لے آئیں, مجھ سے غلطی ہوئی بہت بڑی. تو جب وہ رہائی دی تو انہوں نے کہا میری شرط ہے کچھ, اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. کیا؟ تو 11 یا 12 شرطیں انہوں نے دینوں سے ایک شرط بھی دی, بڑی عجیب شرط تھی. کیا؟ کہ میرے ساتھ اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت ہے یہاں پر, وہ قید خانہ تھا, چور ہوگا, بدماش ہوگا, ڈاکو ہوگا, وہاں اولیاء اللہ کہاں آ گئے؟ کہتے ایک بہت کثیر جماعت ہے ہزاروں کے حساب سے, میرے ساتھ اولیاء اللہ ہیں, وہ بھی سب میرے ساتھ نکلیں گے تب میں نکل سکتا ہوں. انہوں نے بادشاہ بڑا حیران ہو کہ اس سکھا پہ اولیاء اللہ, کہتا ٹھیک ہے جی آپ لے جائیں, آپ نے ساتھ نکالے. جب وہ نکلے وہی قیدی جو آپ کے ساتھ تھے, الحمدللہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو جو تھے وہ بڑے درجے کے مقام کے اولیاء اللہ نکل رہے تھے, چہرے بدلے, رنگ بدلے, اور اتنے بڑے بڑے مقامات پہ گئے ہیں, وہ حضرت کے خلیفہ بنے ہیں حضرت کی تحریک کے مطابق. میرے بھائیو زمانہ کچھ ایسے ہی ہے الحمدللہ, ہم سے مجاہدے تو ہوتے ہیں, اسی ہی بات یہ ہے, کمزور آدمی ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, ہم ٹوٹے پھوٹے دین پہ اکتفا کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں قانون تو وہی ہے جو قانون بنا ہے. زندگی اور کامیابی تو ہماری اسی حالت میں ہے جب ہم مکمل طور پر حرام سے بچیں گے, نبی اپنی اتباع کریں گے, बुराइयों से बचेंगे। चाहे वो तो अल्लाह ने जहाँ किस्मत हमारी रखी है, यहाँ रख लें, पाकिस्तान रख लें, किसी हर जगह ही की है। आप बुराई देखेंगे तो बुराई हर जगह मौजूद है। इसी मुल्क में चले जाएं, बिल्कुल स्टैंडर्ड वही है, थोड़ा सा रुख बदल जाता है, वो तो बड़ा गंदा मुल्क है। अच्छाई करना चाहेगा तो अल्लाह अच्छाइयों के दरवाजे खोल देता है। इस मुल्क में हमारे जवान जवान बच्चे बैठे हैं, मस्जिद में नहीं बैठे, एहतिकाफ में बैठते हैं नहीं बैठते, बुराइयों से निकले लोग बनते नहीं बनते, जिंदगी शराब खानों से निकल के यही बनती ही नहीं बनती लोगों की। पीछे भी तो एक मुल्क है सर। और ऐसे आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं, मैं आपको पाकिस्तान में दिखा देता हूँ, हजारों जवान लोग रात के वक्त शराब खानों में घुसे होंगे, बुराइयों में घुसे होंगे। तो ये ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला ने तो ये तो इंसान की किस्मत में रखा है जहां ही चला जाए, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने मकसद को सामने रखना चाहिए कि ये जिंदगी नहीं है हमारी, जिंदगी तो यही है, फकत फाजा फौजन अजीमा, मौत किसी वक्त पकड़ सकती है। तो भाई कुछ भी ना हो तो अल्लाह से एक ही दुआ करते रहे। एक बस्ती में एक बुजुर्ग थे, तो अजीब दुआ करते थे, जैसा हम करते हैं ना, बारिश ना हो ना कभी, तो दुआ करते अल्लाह बारिश दे, हमारी फसलें खत्म हो रही हैं, अल्लाह बारिश दे तो हमारे मवेशी हैं प्यास से मर रहे हैं, अल्लाह बारिश दे कुछ रहमत डालना, हमारी फसलें हो जाएं, जाहिर है लोग दुआ करते हैं इस तरह। तो उनकी दुआ बड़ी अजीब थी, खुशहाल बस्ती सब कुछ, वो कहते या अल्लाह इस बस्ती पे तो एक करम फरमा। रात के वक्त की दुआ करते थे कि कोई अपना अल्लाह वाला भेज दे यहाँ पर, कि तेरी रहमत की बारिश शुरू हो जाए। हम इन बारिशों की दुआ करते हैं मेरे मौला, मैं तो उससे इसकी दुआ करता हूँ कि किसी अल्लाह वाले के कदम तो इस बस्ती पे डाल दे। मुझे मालूम है कि उसका कदम पड़ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरी रहमतों की बारिश आना शुरू हो जाएगी। क्या चीज दुआएं देखें आप, तो क्या हम ये दुआ भी नहीं कर सकते यार? क्या इतना भी, बस इतना भी हम स्टेप उठा नहीं सकते? हम चले बहुत कमजोर हैं, तहज्जुद गुजार हम नहीं हो सकते, बड़े बड़े तिलावतें हम नहीं कर सकते, इल्म हम नहीं सीख सकते, हालांकि सब दरवाजे खुले हैं, लेकिन इतना भी इंसान कोशिश कर ले, इतना भी हिल जाए इंसान, कितना गुनाह छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन पॉजिटिव दुआ तो एक मांगने आदमी, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे बताए, मुझे बताए, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान दुआ मांगे, और ऐसी दुआएं अल्लाह हुआ पर, वो दुआ जो जिस दुआ में अल्लाह को मांग रहे हैं, सुबह किसी चीज से आप अल्लाह को मांग रहे हैं तो इस दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करे, जी तो नामुमकिन बात है, बहुत मुश्किल बात है, बिल्कुल हो नहीं सकता। मैं कई वाकयात आपको अपनी पर्सनल जिंदगी में बता सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन हजरात को देखा कि जो ये दुआ मांग रहे हैं मस्जिद में, और अल्लाह पाक ने वहीं उनका काम बना दिया। जिंदगी मैंने देखा लाखों बुराई में उठे हुए भरे हुए शख्स, लेकिन कहते थे हम नहीं छोड़ सकते, अल्लाह चर्स पीता हूँ, अल्लाह गुनाह करता हूँ, या लड़कियों के पीछे फिरता हूँ, अल्लाह फला गुनाह होता है, रातों को उड़के मैं फला गंदी चीजें देखता हूँ, ये माहौल जो है आज का। तो कम अज कम गुनाहों के साथ आदमी सिर्फ यही दुआ मांग ले के अल्लाह पाक तो कर्म फरमा, कोई अपना दोस्त दिखा ताकि मैं उससे एक सलामी दुआ कर लूं और मेरे दिल में तो उसकी मोहब्बत डाल दे। सिर्फ दुआ मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम तलाश करें कुछ करें। इस दुआ के बाद अल्लाह सुब्हान का दुआ मांगना हमारा काम है और पैदा कर देना अल्लाह का काम है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इतनी भी कोशिश नहीं करते, मौत का खौफ तो है ही नहीं, आखिरत का गम तो है ही नहीं, गुनाह करते हैं, हम सोचते ही नहीं कि हमारा हाल क्या हो। कितनी बड़ी आयत है कि एक जर्रे के बराबर नेकी भी देखी जाएगी और एक जर्रे के बराबर बुराई भी देखी जाएगी। मुझे जर्रे की क्योंकि हैसियत है तो अल्लाह पाक ने इसकी मिसाल क्यों दी बुराई के साथ? हम तो अरे छोटी जी गल नाल की होंगे जी, ऐ ना के फर्क पड़ना, छोटे झूठ बोल रहे जी, बाद च मैं नमाज से पढ़ लेती सी बात हो गई। ये धोखे हैं शैतान की, जो दो ताकतें हमें बर्बाद कर रही हैं, वो धोखा ताकतें हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि एक जर्रे के बराबर भी बुराई जो होगी वो भी देखी जाएगी और एक जर्रे के बराबर नेकी होगी वो भी देखी जाएगी। हम कितने बड़े बड़े अमाल हमारे सामने हो रहे होते हैं जिसके अल्लाह पाक ने जमीन आसमान के बराबर सवाब दिए होते हैं। मुझे बताया ये कम सवाब है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ 20 मिनट बैठ के अल्लाह कहते हैं इंतजाम मैं करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, इंतजाम भी तेरा नहीं होगा, खाने का इंतजाम मैं करूंगा, ख्वान मैं बिछाऊंगा, 20 मिनट उस दस्तरखान पर बैठ कर उस जमात के साथ बैठ के तू जिक्र कर अल्लाह का, जिक्र कर। अब उसके इनामात मैं आपको सारे तो बता ही नहीं सकता कि कितने इनामात हैं उसके, इतनी देर की वहां, जबकि अल्लाह का स्टैंडर्ड जर्रे के बराबर नेकी का मामला है वहां। तो फजर की नमाज पढ़, फर्ज है, पढ़ने बाद इधर उधर देख, अगर कोई जमात अल्लाह के जिक्र में है उसके साथ बैठ जा, बैठने के बाद अल्लाह उठ, अल्लाह के शुक्राने में दो नफिल पढ़, तू अभी निकलेगा नहीं तो एक हज उमरे का सवाब तुझे दे दूंगा मैं। और उसके अलावा जो फजाइल तो अल्लाह ने बयान कराए नहीं, नहीं करते। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्लाह पाक हमें सारी सुबह से लेकर शाम तक हमारे सामने रास्ते खोलते हैं नेकियों के, हम नहीं करते। तो जितनी चाहे जमा कर लें, और एक महदूद वक्त है, अल्लाह ही बहुत महदूद वक्त है। ये देखें हम आए, अंदर आए, उस वक्त कौन सा टाइम था, मगरिब का टाइम था ना, खत्म होने वाला है। अब वो कितना खुशनसीब इंसान होगा इस थोड़े से वक्त के अंदर जिसने नेकियों के अंबार लगा लिए होंगे, और इसी नेकी के वक्त में कितने लोगों ने जाय कर और की हालत रही। अच्छा ओके, आजकल की बन रहे हैं यार, कामदा की हो रहे हैं, इसी वक्त के अंदर अभी बहुत से लोग जो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, कितने खुश नसीब होंगे जो पलट के वापस आए होंगे, देखें इस जमात में क्या और क्या मामला हुआ कि इस जमात में बैठ के। मकसद तो मैं तो आपको जानता हूँ ना, आप मुझे ज्यादा जानते हैं, हमें तो ये था कि इस मस्जिद में जिक्र होगा बैठेंगे, मैं ना सलाम हुई ना दुआई किसी ना होगी ना जानता हूँ ना, मैं तो नाम ही नहीं जानता आपको बहुत से लोगों। देखिए अल्लाह का करम हुआ कि हमें एक जगह बिठा दिया, और बिठाने के बाद जिक्र करा दिया, जिक्र कराने के बाद उठेंगे नहीं, पीछे से हमारे मोहरें लग जाएंगी कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। कहाँ बख्शे गए, एक काफिर मुल्क में बख्शे गए, ऐसे मुल्क में जहां लोग कहते हैं वो तो बड़ा गंदा मुल्क है या उत्थे तो बड़ी गंदी चीजें हैं, वहां बख्शिश हो गई। तो अल्लाह पाक ने तो इतने रास्ते खोले हुए हमारे कि ताज्जुब नहीं, हमें तो ईमान वालों को सोचना भी नहीं चाहिए कि हम जहन्नुम में जा सकते हैं, इतनी नहीं की हमारी। तो भाई कोई वक्त जाय ना करे आते, तो अगर हमसे गुनाह हो रहे हैं तो ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हमारे दिल में अपने किसी प्यारे बंदे की मोहब्बत पैदा कर दे, और शैतान पैदा होने नहीं देगा। अक्सर मैंने देखा है कि जब कोई अंदर किसी अल्लाह वाले के पास जाता है ना, तो थोड़े से लम्हात में उसके वसवसे पैदा शुरू कर देता है कि जी ख्यालात आ रहे हैं आपके खिलाफ बड़े सख्त, हम या उसकी हर बात में नेगेटिव चीजें पैदा करेगा, ये तो यार बिद्दत है, ये तो शिर्क है, ये तो कुरान के खिलाफ है, और ऐसी शक पैदा करेगा वो ताकत भी नहीं करेगा उससे जाके पूछ ले और उसको भगा देगा। देखिए कमाल रास्ता बंद करता है शैतान। तो भाई मेरे ये तो इतना आसान रास्ता है कि हमें मोहब्बत चाहिए किसी के पास किस सख्त, और जब देखें किसी अल्लाह वाले से हम मोहब्बत करेंगे तो ये तो बेलौस मोहब्बत है, शर्त लगा दी अल्लाह पाक ने, इसमें ये नहीं कि आप इतना पैसा दें, इतना चंदा दें, इतना उसको जनाब अला उसकी जेब में डालें, इसका फला 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 होते हैं ना, टैक्स तो हर जगह चलता है ना, उसको राजी करें, उसको फलां करें, उसको तो ये कर दो, पैसे दे दो, फलां दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, कारोबार दे दो, या हजारों चीजें ऐसी, कोई चीज भी इंसान नहीं चलता। तो वहां शर्त ये है कि तेरी मोहब्बत का वहां मियार सिर्फ एक होगा, और वो क्या ऊंचा बोले अल्लाह, और जहां मियार अल्लाह होगा वहां सिवाय अल्लाह के जिक्र के होगा ही कुछ नहीं, होगा ही नहीं कुछ, जब भी बैठोगे जिक्र ही होगा, जिक्र ही होगा अल्लाह ताला का, अल्लाह जो है वहां तो कोई लेना ना कोई चेक करता है, ना चंदा आता है, ना कोई मामला होता है, ना कोई किसी चीज के चंदे नहीं चलते यहाँ, तो कोई रुकावट है। सीधे गए अल्हम्दुलिल्लाह बैठे, और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर किसी बंदे में बैठे, और मोहब्बत इस पर मोहब्बत बढ़ाते हैं अल्लाह पाक, क्योंकि जब मोहब्बत बढ़ती है उस शख्स से तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज उसकी कबूल करता है, हर चीज खुशी से कबूल करता है। वो सिर्फ एक दफा गाएगा आपसे यार नमाज तो पढ़ेगा, बस मोहब्बत ही ना, जब मोहब्बत का ऑर्डर चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी कहता है मैं जी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं पढ़ूंगा, नमाजी हो जाते हैं यार दाढ़ी ते रख ना इस तरह में, तो खैर ते कर मैं रखूंगा जी इंशाल्लाह। अब 10,000 तकरीर सुनाते रहे वो इधर से तो भाग जाएगा, बल्कि कहते ओ मौलवी साहब आ गया नस मौलवी थे कि भाग जाते हैं कि अब ये कहेगा जा तो नमाज पढ़ फला कर, जहां मोहब्बत का जाल पड़ गया मान ही जाएगा, उसके करीब हो जाएगा। और ये मोहब्बत किसने दी है? अल्लाह ने। तो ये एक ऐसा तरीका है अल्लाह तक पहुंचने का कि अल्लाह ताला खुद इस तरीके को बेनतहा महबूब करते हैं, इतना महबूब करते हैं कि आप आखिरत में ये दर्जा दिखा दिया कि जो उतियुल्लाह और रसूल को जिसने इस तरीके से पाया, मेरे किसी महबूब से मोहब्बत के तरीके से पाया, उन लोगों का मुकाम इतना बुलंद हो। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए दोस्तों कि अल्लाह पाक हमें अच्छे नेक लोगों की सोबत नसीब फरमाए, उसकी कदर भी नसीब फरमाए, उसमें वसवसे हैं, चक्कर हैं, फजूल बातें हों, लेकिन बस क्योंकि हाई के ताल्लुक नहीं, जब तक हाई की दुनिया की बात को कर ही नहीं रहा आपसे, हाई नहीं लेना देना ना कुछ आपको, तो एक जिक्र का मामला है। तो बाकी चीज़ से ही नहीं घबराना चाहिए आदमी को, क्या मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत सयाकार हूँ, मैं किस तरह से जीऊँगा? सुभान अल्लाह, हो सकता नहीं, मैं कहता हूँ हो सकता नहीं कि अल्लाह के इस फार्मूले के मुताबिक इंसान को अल्लाह को पाना चाहे, अपनी मंजिल को पाना चाहे अल्लाह और रसूल की, और इस रास्ते को पकड़े, ये हो सकता नहीं। मैं कहता हूँ, घंटी से कहता हूँ कि वो इस दुनिया से नाकाम जाए, हो नहीं सकता, अल्लाह का वादा है इंशाल्लाह वो कामयाब जाएगा, इस दुनिया से कामयाब जाएगा, कामयाबी के साथ जाएगा। तो भाई पहली दुआ अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक को नेक इंसान की मोहब्बत वाले सीने में डाल, फिर उसमें भी इस्तकामत अख्तियार करें आदमी, उस मोहब्बत को बढ़ाए घटाए ना, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। शैतान तो बहुत मामूली चीज़ है, नफ्स तो कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा कदम बढ़ा लें तो इंशाल्लाह बड़ी सी बड़ी भी आदतें खत्म हो जाती हैं, बड़ी सी बड़ी आदतें खत्म हो जाती, नफरत हो जाती है आदमी, नफरत खुद ही हो जाती है, दिल ही नहीं करता उसका, यार इतने इतने घंटे बैठ के देखते थे तस्वीरें वो फलां अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो तो मोहब्बत कन्वर्ट हुई नहीं, बस मोहब्बत बढ़ा लें आदमी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।